गुरु भक्ति योग जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सहाय के बिना यह मार्ग कौन दिखा सकता है? गुरु ही वह मार्ग दिखाते हैं। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट माने गुरु ही हैं। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जी जैसे देवी अवतारों ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। साधक को अपने गुरु का या किसी भी संत का बुरा बोलना या बुरा चाहना नहीं चाहिए। साधक चाहे कितना भी महान हो, फिर भी उसे गुरु के समक्ष फिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। गुरु पृथ्वी पर देवदूत है, नहीं देव ही है। कितने महान होने के बावजूद भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों के अपने गुरु थे। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश होता है। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालाबाई जी बालपन से ही बड़ी भगवत भक्त थी। संत कृष्णदास जी परिहारी से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी। एक बार संत कृष्णदास जी अपनी शिष्या रानी की प्रार्थना पर उनके यहां पधारे। बालाबाई जी ने अनुनय विनय कर उन्हें रोक लिया, उनकी धुनी अपने महल में लगवाई और अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न करके वचन ले लिया कि उन्हें बताए बिना बाबा वहां से नहीं जाए। राजा भी संत का शिष्य बन गया। संत कुछ दिन वहां रुके, पर समाज में भक्ति के प्रचार का उद्देश्य सामने होने से उन्हें वहां अधिक रहना संभव नहीं था। वहां से विदा लेने के लिए उन्होंने एक लीला रची। एक दिन वे भगवान नृसिंह के मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। राजा और रानी भी वहां उपस्थित थे। कीर्तन समाप्त होने पर संत ने सहज भाव से कहा, अब जा रहा हूं। रानी समझी कि धुनी पर जाने को कह रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया, पधारो महाराज। रानी का इतना कहना था कि संत वहां से चल दिए। राजा रानी को जब कृष्णदास जी के स्थान छोड़कर निकल जाने की बात पता चली तो उनसे अपने गुरु का वियोग सहन न हुआ। दोनों अन्न जल त्याग कर पड़े रहे। तब गुरु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम लोग दुख न करो, मेरे चरण चिन्हों के अर्चन वंदन से और उसी में तुम सुख मानकर भगवत भजन करो। अब अन्न जल ग्रहण करो। राजा रानी संतुष्ट हुए और गुरुदेव के आदेश अनुसार भगवत भजन, ध्यान, पूजन आदि करने लगे। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार चलने से राजा रानी दोनों साधना में उन्नत होते गए। एक बार राजा पृथ्वीराज नर नारायण का दर्शन करने बद्री का आश्रम गए। वे रानी को महल में ही छोड़ गए। रानी भी भगवत दर्शन की उत्कंठा जगी। तब उसने संकल्प करते ही वे राजा से पूर्व ही मंदिर में पहुंच गए। राजा जब मंदिर में पहुंचे तो संयोग से रानी के पीछे खड़े हो गए, पर उन्होंने उसे पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, बाई जी जरा बगल हो जाइए, मैं भी दर्शन कर लूं। रानी बगल हटी तो राजा को लगा कि ये रानी है, पर इसे असंभव जान उन्होंने ध्यान उधर से हटा लिया और तन्मय हो भगवान के दर्शन करने लगे। रानी भी जैसे बद्री का आश्रम गई थी वैसे ही लौट आई। फिर जब राजा लौटे तो उन्हें प्रणाम कर रानी ने राजा द्वारा मंदिर में किया गया बाई संबोधन उद्धृत करते हुए कहा, अब आप मुझे बाई जी ही पुकारा करें। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि जिस महिला से उन्होंने मंदिर में बगल हो जाने की बात कही थी वह उनकी रानी ही थी। वे समझ गए कि रानी गुरुदेव की कृपा से सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुकी है। रानी ने कहा, मेरे प्रति वैसा ही भाव रखे जैसा बाई के प्रति रखा जाता है। नर नारायण के सामने उनकी इच्छा से हुआ यह नया रिश्ता कभी न टूटे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक रानी से अपना नया रिश्ता स्वीकार कर लिया और अंत तक उसे निभाया। गुरु कृपा से राजा भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। संत कृष्णदास जी ने राजा रानी को श्री नृसिंह रूप शालिग्राम दिए थे और आशीर्वाद दिया था कि जब तक नृसिंह पौली में तब तक राज झोली में। अर्थात जब तक नृसिंह मंदिर की देहरी में भीतर रहेंगे तब तक राज उनकी वंश परंपरा में रहेगा। पृथ्वीराज ने आमेर की पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया, उसमें नृसिंह देव को विराजमान किया। वह मंदिर नृसिंह बुर्जा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। जब तक संत के वचनों का पालन किया गया, अर्थात नृसिंह रूप शालिग्राम को मंदिर की देहरी के बाहर नहीं लाया गया, तब तक मुसलमान बादशाहों का आतंक और उनके पश्चात अंग्रेजों की कुदृष्टि इस राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। परंतु दैवयोग से एक बार किसी ने शालिग्राम को चुरा लिया। इस कारण से भारत की आजादी के बाद जब सभी राज्यों का भारत में विलय हुआ तब आमेर यानी आज का जयपुर का भी विलय हो गया।